नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज कार्यक्रम में बात की जाएगी क्रिकेट के मैदान की, जहां महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला है जारी और भारतीय टीम को मिली है फिर एक बार शानदार और तेज शुरुआत। बैडमिंटन के कोर्ट पर आज किदांबी श्रीकांत तथा सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी लेकर के आई है गुड न्यूज। चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में की है अपनी जगह पर की, वहीं अनाहत सिंह ने स्क्वाश के मैदान में फिर एक बार जीत की तरफ बढ़ाया है कदम। लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में बना करके जगह और यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्काराज ने दूसरे दौर में दर्ज की है एक और जीत। पहला सेट हारने के बाद शानदार वापसी का किया प्रदर्शन और 2027 में होने वाली पहली ICC महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी अब श्रीलंका के स्थान पर भारत में की जाएगी आयोजित। आज के कार्यक्रम को शुरू किया जाए दुबई में इस समय खेले जा रहे भारत और हांगकांग के बीच महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के मुकाबले से, जहां तक यह समाचार मिलने तक भारत ने 8वें ओवर में बिना कोई विकेट खोए 69 रन बना लिए हैं। हांगकांग ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। अगर भारत की बात की जाए तो ग्रुप ए के अपने पहले मुकाबले में इस टीम ने 94 रन से एक शानदार जीत दर्ज की थी थाईलैंड के ऊपर और टीम की नज़र जो है आगामी 5 तारीख को पाकिस्तान से होने वाले मुकाबले पर होगी। और इस क्रिकेट मुकाबले पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे सहयोगी विशेष। विशेष, आज के मैच पर क्या खास अपडेट है आपके पास?
शक्ति, भारतीय टीम ने अपनी शुरुआत जो है बेहद शानदार करी है। आठवां ओवर चल रहा है और भारतीय टीम 74 रन बना चुकी है बिना किसी नुकसान के। दोनों सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और शफाली वर्मा शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। शफाली वर्मा ने जहां 16 गेंदों पर 28 रन, वहीं स्मृति मंधाना ने 31 गेंदों पर 44 रन बनाए हैं। शफाली ने अपनी पारी में 2 छक्के भी लगाए हैं। इसी के साथ ये मैच जो है भारत बहुत अच्छी पोजीशन में होल्ड कर रहा है इस मुकाबले में और इस मुकाबले को जीतकर एक अपनी जो स्थिति है सेमीफाइनल के लिए उसको और मजबूत करना चाहेगा।
जी बिल्कुल, स्थिति मजबूत करना चाहेगा। हम एक बार स्थितियां भी जानना चाहेंगे, जो कि एशिया कप चल रहा है, मल्टी नेशन टूर्नामेंट है इस समय, जो कि अब धीरे धीरे हर टीम अपने मुकाबले खेल चुकी है, पूल में और पॉइंट टैली में क्या स्थिति नजर आती है?
ग्रुप ए की बात करें शक्ति, तो इंडिया अभी नंबर 1 पर बनी हुई है एक में से एक मुकाबला जीतकर, वहीं दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है, उन्होंने भी एक में से एक मुकाबला जीता है। अगर भारत ये मुकाबला जीतती है तो भारत की राह सेमीफाइनल के लिए और आसान हो जाएगी और पाकिस्तान के मुकाबले पर उनको निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वहीं थाईलैंड और हांगकांग दोनों निचले पायदानों पर हैं। वहीं ग्रुप वी में श्रीलंका जो है वो 2 मुकाबले में से 2 जीत चुकी है और अपनी स्थिति जो है लगभग तय कर चुकी है सेमीफाइनल के लिए। वहीं बांग्लादेश भी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है दूसरे स्थान पर एक में से एक मुकाबला जीतकर।
जी बिल्कुल, तो ये था पॉइंट टेबल का हाथ हल। हम एक बार श्रोताओं को वापस जरा मैच का स्कोर कार्ड बता देते हैं। भारत का पहला विकेट गिर गया है। पहले मैच में शानदार बल्लेबाजी करने वाली शेफाली वर्मा 17 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 28 रन बना करके आउट हो गई। हालांकि उन्होंने अपना काम काफी हद तक टीम के लिए कर दिया और एक मजबूत शुरुआत टीम को दे करके पवेलियन लौटी है। भारत के लिए इस पूरे मुकाबले का, क्योंकि भारत को परसों पाकिस्तान के खिलाफ अपना अंतिम ग्रुप मैच खेलना है, उन तैयारियों के अनुरूप देखा जाए तो ये कितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है भारत के लिए मैच?
भारत के लिए एक वार्म अप गेम की तरह साबित होगा पाकिस्तान के मुकाबले से पहले, क्योंकि पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने बल्लेबाजी में बहुत सारी गलतियां करी, जहां पर 46 रन के अंतराल में लगभग 7 विकेट भारत ने गंवाए थे और एक बहुत बड़े स्कोर करने से चूक गए थे। तो उन सब गलतियों पर ध्यान देते हुए जैसी आज शुरुआत मिली है, इसी को कैपिटलाइज करके एक बड़ा स्कोर जो है बनाने की ओर भारतीय टीम देखेगी।
जी बिल्कुल, भारतीय टीम चाहेगी कि एक बड़े स्कोर में तब्दील किया जाए शानदार शुरुआत को। और अब क्रिकेट के मैदान की एक और खबर की तरफ नजर डाली जाए, जो कि आई महिला क्रिकेट के ही मैदान से। 2027 में होने वाली पहली ICC महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी अब भारत में आयोजित होगी। 14 से 28 फरवरी के बीच निर्धारित ये प्रतियोगिता पहले श्रीलंका में होनी थी, इसकी मेजबानी अब भारत को प्राप्त हो गई है। श्रीलंका से मेजबानी लेने का कारण श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड में सरकारी दखल के बाद प्रशासनिक सुधारों की जारी प्रक्रिया को बताया जा रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने बताया कि 6 टीमों के बीच खेले जाने वाला यह टूर्नामेंट अब 2 वेन्यू पर आयोजित होगा। इनमें मुंबई का क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया और वडोदरा का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम शामिल है। आईसीसी ने कहा कि यह टूर्नामेंट पहले श्रीलंका में होना था, लेकिन अब यह भारत में होगा, क्योंकि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड जुलाई में आईसीसी के सालाना सम्मेलन में तय किए गए व्यापक सुधार कर रहा है। श्रीलंका क्रिकेट का कामकाज अभी एक अंतरिम ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी की देखरेख में जारी है। आईसीसी ने यह भी बताया कि भारत को मेजबान के तौर पर चुनने से पहले एक मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के प्रस्तावों पर विचार किया गया था। महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 के लिए क्वालिफाई करने वाली 6 टीमों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलेगी। इनमें से शीर्ष 2 टीमें 28 फरवरी को होने वाले फाइनल में पहुंचेंगी। इन टीमों का चयन 6 जुलाई के क्वालिफिकेशन कट ऑफ तारीख पर आईसीसी महिला T20 टीम रैंकिंग के आधार पर हुआ है। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
तो भारत के हिस्से एक और मेजबानी, एक बड़ी प्रतियोगिता और कई मायनों में खास होगी। सबसे खास ये होगा कि पहली बार महिला क्रिकेट में चैंपियंस ट्रॉफी देखने को मिलेगी। विशेष भारतीय खिलाड़ियों के लिए कितनी बेहतर बात है कि अपने घरेलू दर्शकों के बीच में आपको एक और बड़ा टूर्नामेंट देखने को और खेलने को मिलेगा।
शक्ति, अगर घरेलू सरजमीं की बात करें तो 2025 विश्व कप में भारतीय टीम ने अपनी ही धरती पर आयोजित विश्व कप को जीता था। उसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से मैदान पर उतरती दिखाई देगी, जहां चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम T20 फॉर्मेट में अपना दमखम दिखाएगी। DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया वो मुकाबला अभी तक भारतीय दर्शकों की यादों में बसा हुआ है।
जी बिल्कुल, आपने हरमनप्रीत एंड कंपनी की बात की, वो शानदार जीत कैसे कोई भुला सकता है जब भारत ने विश्व कप अपने नाम किया था। और एक टाइट शेड्यूल जो है भारत का होना है, यहाँ से एशियन गेम्स और शायद कह सकते हैं कि इस T20 फॉर्मेट की पहली चैंपियंस ट्रॉफी को जीतकर भारतीय टीम उस T20 विश्व कप में जीत ना पाने की कसक को भी मिटाने का काम करेगी। क्रिकेट के बाद अब स्पोर्ट्स कैन में बात बैडमिंटन की। किदांबी श्रीकांत तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। सुनते हैं आज खेले गए मुकाबलों का पूरा हाल।
किदांबी श्रीकांत ने आज पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में कनाडा के विक्टर लाई को एक कड़े मुकाबले में 21-18, 21-19 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जहां अब उनका सामना हांगकांग की ली च्यूक यू से होगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल्स जोड़ी ने फ्रांस के पोपोव बंधुओं क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव को 21-17, 22-24, 21-9 से हराया। अब ये भारतीय जोड़ी क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रूप और आंद्रे सकारू रश्मि सेन का सामना करेगी। हालांकि महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से 17-21, 21-18, 16-21 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो का अभियान ताइपे के ह्यू क्वांग हॉन्ग और सू येन हुई से सीधे गेम में 18-21, 18-21 की हार के बाद समाप्त हो गया। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
तो कह सकते हैं कि चिराग और सात्विक की ये जोड़ी, जिसने 2022 के एशियन गेम्स का स्वर्ण पदक जीता था, फिर एशियन गेम्स से ठीक पहले अपनी शानदार लय में नजर आती हुई, और शायद वो एशियन गेम्स और सिंगापुर ओपन जैसे टूर्नामेंट का खिताब जीत चुकी ये जोड़ी वापस एक बार इसी इतिहास को दोहराने की कोशिश में होगी। अब बैडमिंटन के बाद बात स्क्वाश की, जहां नाहद सिंह लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। इस विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियन ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम की नील गिल्स को 13-11, 4-11 और 11-8 से हराया। अब अनाहत का अगला मुकाबला शिव सारंगी और गरस के बीच होने वाले प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले के विजेता से होगा। भारत के अन्य खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो दूसरे दौर में रमित टंडन और पहले ही दौर में वीर चोटरानी का अभियान इस प्रतियोगिता से समाप्त हो चुका है। तो कह सकते हैं कि भारत के अभियान की पूरी उम्मीदें इस युवा खिलाड़ी पे होंगी, जिसकी नजर इस टूर्नामेंट से भी अधिक एशियन गेम्स पे स्वर्ण पदक जीतने पर है। और टेनिस में US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज ने आज तीसरे दौर में जगह बना ली है। उन्होंने अपने दूसरे दौर के मुकाबले में जैम फारिया को पहले सेट गंवाने के बाद शानदार वापसी करते हुए 4-6, 6-0, 6-3 और 6-2 से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाक्त डी वेवर के साथ नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री डी वेवर को हॉकी विश्व कप 2026 के सफल आयोजन के लिए बधाई दी।
पिछले महीने बेल्जियम और नीदरलैंड ने मिलकर हॉकी वर्ल्ड कप होस्ट किया। मैं इस वर्ल्ड कप के भव्य आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं अपने खिलाड़ियों की मेहनत और प्रदर्शन के लिए भी उनकी सराहना करता हूं।
तो खेल एक बड़ी भूमिका निभाते हुए दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में ऐसा ही कुछ उदाहरण हमने देखा, जहां हॉकी ने भारत और न्यूजीलैंड के जो टाइस थे उनको किस तरीके से 100 वर्ष पूरे होने पे मजबूत करने का काम किया था। और ये विश्व कप जिसमें भारतीय महिला टीम ने 5वां स्थान हासिल करके ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था, जबकि पुरुष टीम को 8वें स्थान से संतोष करना पड़ा था। और अब बात भारतीय जूनियर पुरुष और महिला हॉकी टीमों की कर ली जाए, जो कल से शुरू हो रहे AHF जूनियर एशिया कप में अपने खिताब को बचाने के इरादे से उतरेंगी। भारतीय महिला टीम ने पिछले 2 संस्करण में जूनियर एशिया कप की ट्रॉफी जीती थी और इस बार मिडफील्डर खेदेम सिलेमी चानू टीम की कप्तानी करेंगी। एलीट पूल में शामिल भारत अपने अभियान की शुरुआत 5 सितंबर को साउथ कोरिया के खिलाफ करेगा, जबकि भारत 5 सितंबर को इंडोनेशिया के खिलाफ पूल ए में अपने अभियान की शुरुआत करेगी पुरुष टीम। इसके बाद 6 सितंबर को पुरुष टीम का मुकाबला जापान से, 8 सितंबर को साउथ कोरिया से और 9 सितंबर को चीनी ताइपे से होगा। तो अब भारत में स्टेज सेट हो रहा है एक आर्चरी टूर्नामेंट का, जहां आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और भारतीय तीरंदाजी संघ के महासचिव वीरेंद्र सचदेवा ने अहमदाबाद में होने वाली विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज से पहले आज भारतीय जर्सी का अनावरण किया। 2024 पैरालंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता हरविंदर सिंह और कांस्य पदक विजेता तीरंदाज शीतल देवी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। तो भारत इस एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए तैयार है। इस अवसर पर श्री मुंडा ने कहा कि ये खुशी का विषय है कि विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज गुजरात में हो रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के खिलाड़ी गुजरात आ रहे हैं और इस तरह के आयोजन खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। श्री मुंडा ने बताया कि उन निर्देशों के खिलाड़ी पहले ही यहां पहुंच चुके हैं।
मुझे बेहद खुशी है कि गुजरात में ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज, जिसके माध्यम से दुनिया भर के खिलाड़ी गुजरात में आ रहे हैं और वो अपना प्रदर्शन करेंगे। गुजरात गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है और इस तरह के आयोजन होने से देश के खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। अभी 19 कंट्री के लोग यहाँ पहुंच चुके। देखा जाए तो पहली बार ऐसा मोदी गवर्नमेंट के माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में एक विजनरी लीडरशिप के साथ खेल को नया आयाम देने में देश सफल हो रहा है।
तो भारत एक बेहतर आयोजन स्थल के रूप में उभरता हुआ। और एशियाई खेलों के लिए एक और अपडेट भारत के पास है, जहां राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी जसवीर सिंह को जापान में होने वाले एशियाई खेलों के लिए चोटिल नीरज चोपड़ा की जगह 70 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम में शामिल किया गया है। तो विशेष इस पर आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि नीरज ने जो काम किया कि आज भारत में उनको देख करके बैक टू बैक कितने जेवलिन स्टार्स जसवीर, सचिन, किशोर जेना तैयार हैं कि अब पूल की कमी नजर नहीं आती।
जी बिल्कुल शक्ति, जब यशवीर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीता था तब सभी का पूरा श्रेय, इसका पूरा श्रेय जो है सभी ने नीरज को दिया था कि उन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर एक नया टारगेट सेट किया था भारतीय जेवलिन थ्रोअर्स के लिए। और ये बहुत ही शानदार एक उनके लिए मौका है यशवीर के लिए, जो अब वो अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित करने के लिए देखेंगे।
जी बिल्कुल, यशवीर से उम्मीद होगी भारत को कि वो नीरज की कमी पूरी करें। और जब नीरज के स्थान पर आप आए हैं तो आपसे उम्मीदें अपने आप बढ़ जाती हैं। विशेष जेवलिन हटा दिया जाए तो 77 मेंबर्स का ये स्क्वाड है, किन खिलाड़ियों से सबसे अधिक उम्मीदें भारत को होंगी?
भारत के लिए गुलवीर सिंह और पारुल चौधरी ये एक बहुत बड़े नाम के रूप में साबित हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एशियाई खेलों में 3 स्पर्धाओं में ये भाग लेंगे। गुलवीर 10,000 मीटर, 5,000 मीटर और 1500 मीटर में, जबकि पारुल 3,000 मीटर स्टिपल चेस, 5,000 मीटर और 1500 मीटर में हिस्सा लेती नजर आएंगी।
जी बिल्कुल, आपने गुलवीर सिंह का जिक्र किया और हमारी आंखों के सामने वो तस्वीरें आई जब अभी हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने 2 पदक भारत के लिए जीते, 10,000 मीटर में सिल्वर मेडल और 5,000 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव आप हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पे भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए। नमस्कार।